नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू करने वाला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष ने महिलाओं को अधिकार देने का ऐतिहासिक अवसर गंवाया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस आगामी चुनाव में महिलाओं का गुस्सा झेलेगी। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का प्रचार तेज। इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम के एक दिन बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने की घोषणा की। वैश्विक बाजारों में तेल के मूल्यों में 11% की कमी आई। मौसम विभाग ने केरलम में रविवार तक भीषण गर्मी और उमस का येलो अलर्ट जारी किया। और डरबन में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच पहला महिला T20 क्रिकेट मैच आज खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। संविधान 131वां संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सके। विधेयक के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 मत पड़े। विधेयक पारित होने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी। इस विधेयक के पारित न होने के कारण परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 सहित अन्य दो विधेयकों को पारित करने के लिए पेश नहीं किए गए। लोकसभा की बैठक कल तक स्थगित कर दी गई है। विधेयक पारित न होने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने महिलाओं को अधिकार न देने वाले इस विधेयक का समर्थन न करके ऐतिहासिक अवसर गंवा दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं का गुस्सा झेलेगी। विस्तृत जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता भूपेंद्र से। जी भूपेंद्र, आज क्या कुछ हुआ सदन में?
जी लवलीन, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित नहीं हो सका क्योंकि इसे सदन में 2/3 बहुमत हासिल नहीं प्राप्त हो सका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विस्तृत जवाब के बाद विधेयक को जब सदन में मतदान के लिए रखा गया तो उसके बाद सदन में उपस्थित 489 सदस्यों में से 2/3 बहुमत के आंकड़े हासिल करने के लिए 326 सदस्यों का समर्थन जरूरी था। उपस्थित कुल सदस्यों में से 298 सांसदों ने विधेयक के पक्ष में और 230 ने इसके विरोध में मतदान किया और इस प्रकार इसे आवश्यक संख्या प्राप्त नहीं हो सकी। संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 का मकसद नवीनतम प्रकाशित जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण को लागू करना था। वर्ष 2023 में संविधान 106 संशोधन अधिनियम, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, पारित किया गया था और इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। और जब ये विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका तो इसके बाद एनडीए के सांसदों ने संसद भवन में विरोध प्रदर्शन किया और विपक्ष पर नारी शक्ति से जुड़े इस महत्वपूर्ण कानून का समर्थन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने विपक्ष पर महिला आरक्षण विरोधी होने का भी आरोप लगाया।
धन्यवाद भूपेंद्र इस जानकारी के लिए। इससे पहले लोकसभा में विधेयकों पर चर्चा का उत्तर देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान में परिसीमन के प्रावधान किए गए हैं और इससे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं का तर्कसंगत वितरण होगा। उन्होंने कहा कि परिसीमन प्रक्रिया से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि होगी।
परिसीमन के प्रावधान से ही SC और ST जिसकी संख्या बढ़ती है उसकी सीटें भी बढ़ने का प्रावधान है। तो एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वो SC और ST सीटों की बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है।
श्री अमित शाह ने कहा कि इस परिसीमन से दक्षिण भारतीय राज्यों में लोकसभा की सीटों में वृद्धि का प्रावधान है।
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल की अभी स्ट्रेंथ है 129, 23.76%। अब 50% वृद्धि कर जब ये पांचों राज्यों की सीटों का हम आवंटन करते हैं, 129 के बढ़कर सीटें 195 होगी, जिसका 816 में प्रतिशत 23.87 आएगी।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण विधेयक नहीं है और इसका महिला सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं है।
द फर्स्ट ट्रूथ,
सच तो ये है कि ये कोई महिला सशक्तिकरण विधेयक नहीं है। इसका महिलाओं के सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं है। एक महिला सशक्तिकरण विधेयक इसी सदन ने वर्ष 2023 में पारित किया था। ये विधेयक तो भारत के चुनावी मानचित्र को बदलने का एक प्रयास है।
एंड हाइडिंग बिहाइंड इंडियाज़ वुमेन।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की निंदा करते हुए श्री राहुल गांधी से माफी की मांग की। श्री राजनाथ ने राहुल गांधी के भाषण से ऐसी टिप्पणियां हटाने को कहा।
इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। यह किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए।
महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल देश के विकास में भागीदार हैं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आज दुनिया में महिला सांसदों की औसत भागीदारी लगभग 27% है और ऐसे समय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से 33% भागीदारी सुनिश्चित करके भारत एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड स्थापित करने जा रहा है। यह आंकड़ा भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता, उसकी दूरदृष्टि और उसकी समावेशी सोच का सशक्त प्रमाण है।
भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि सदियों से महिलाओं ने बिना किसी पहचान की भावना के परिवारों और समुदायों को सशक्त बनाया है।
नारी शक्ति अभिनंदन केवल एक बिल नहीं, बल्कि उन तमाम महिलाओं का संघर्ष, हिम्मत और शक्ति का सम्मान है। सदियों से महिला अपने परिवार और अपने समाज को सशक्त करती रही बिना अपने पहचान की। आज ये बिल उन्हें सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन ही नहीं, बल्कि उनकी आवाज उठाने के लिए भी एक मौका दे रही है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी ने कूचबिहार में चुनावी रैली की। दुर्गापुर और कोलकाता में भी उनकी जनसभाएं होंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जनता तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर देगी। तमिलनाडु में भाजपा नेता के अनामलाई ने सत्तारूढ़ डीएमके पर सरकारी सुविधाओं का दुरूपयोग का आरोप लगाया। सेलम में AIADMK महासचिव एडापड्डी पलनीस्वामी ने डीएमके सरकार पर परिसीमन को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। डीएमके नेता और उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कोयम्बटूर में पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादों को दोहराया। वेल्लोर में चुनाव प्रचार कर रहे पीएमके नेता अंबुमणि रामदास ने डीएमके सरकार के शासन में सामाजिक न्याय नहीं होने की बात कही और बदलाव की मांग की। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 865 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की है। आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल में नकदी, शराब, नशीली दवाओं, कीमती धातुओं और मुफ्त उपहारों से 427 करोड़ रुपए और तमिलनाडु में 438 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। मनोनीत सदस्य हरिवंश लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुन लिए गए हैं। उन्हें निर्विरोध चुना गया। राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने श्री हरिवंश के नाम का प्रस्ताव रखा। तीसरी बार उपसभापति चुने जाने के बाद श्री हरिवंश ने कहा कि मतभेद और स्वस्थ बहस लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि संसदीय कामकाज में व्यवधान के लिए कोई जगह नहीं है। इससे पहले राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री हरिवंश को तीसरी बार उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी बुद्धिमत्ता ने सदन के वातावरण को अधिक परिपक्व और रचनात्मक बनाने में योगदान दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी श्री हरिवंश को बधाई दी। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठ ने रायबरेली के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने आज राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच का भी प्रदेश सरकार को निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार स्वयं जांच कर सकती है और मामले को किसी केंद्रीय एजेंसी को भी सौंप सकती है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आकाशवाणी अपने श्रोताओं को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की जानकारी दे रहा है। इस क्रम में आज चर्चा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के लालगुड़ी विधानसभा क्षेत्र की।
तिरुचिरापल्ली जिले के लालगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला है। डीएमके के चार बार के विधायक ए सौंदरा पांडियन फिर से मैदान में हैं। डॉक्टर लीमा रोज मार्टिन एनडीए के और केपी कृष्णन तमिलगा वेत्री कजगम के उम्मीदवार हैं। इस विधानसभा क्षेत्र का गठन 1952 में हुआ था। यहां डीएमके ने 10 बार जीत हासिल की है, जबकि ऑल इंडिया अन्ना डीएमके और कांग्रेस ने 2-2 बार ये सीट जीती है। लालगुड़ी में 2,11,043 मतदाता हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह से खुल गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अराक्ची ने कहा कि इसराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम के अनुरूप जल डमरू मध्य पूरी तरह से खोल दिया गया है। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पूर्ण आवागमन के लिए खोल दिया है। इस घोषणा के बाद तेल के मूल्यों में 11% से अधिक की गिरावट आई। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी हॉर्मुज जल डमरू मध्य में नौवहन की स्वतंत्रता पर आई आज कई देशों की बैठक आयोजित की थी। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश भर में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति स्थिर है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि अब तक 5 किलो वाले 16,50,000 से अधिक सिलेंडर बेचे जा चुके हैं।
घरेलू एलपीजी के संबंध में किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। कल भी हमने लगभग 50 लाख से अधिक घरों में एलपीजी का सिलेंडर पहुंचाया है। हमारा ऑनलाइन बुकिंग 98% है और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ डिलीवरी लगभग 93% है। कमर्शियल एलपीजी भी 70% तक रेस्टोर्ड है और कल लगभग 8,200 टन कमर्शियल एलपीजी की भी सेल हुई है।
विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान से 2,361 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इनमें से 2,060 भारतीय आर्मेनिया के रास्ते और 301 अजरबैजान के रास्ते वापस आए हैं। मौसम विभाग ने केरलम में भीषण गर्मी के कारण रविवार तक गर्म और उमस भरे मौसम का येलो अलर्ट जारी किया है। पलक्कड़ जिले में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, कोल्लम में 39 डिग्री और कोट्टायम में 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज डरबन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात्रि 9:30 बजे से शुरू होगा। भारत के इनुंग नबी तखिलमंग ने एशियाई जूडो चैंपियनशिप का कांस्य पदक जीत लिया है। चीन के ओर्डोस में इनुंग नबी ने महिलाओं के 70 किलोग्राम भार वर्ग में मंगोलिया की खिलाड़ी को हराकर पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू करने वाला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष ने महिलाओं को अधिकार देने का ऐतिहासिक अवसर गंवाया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस आगामी चुनावों में महिलाओं का गुस्सा झेलेगी। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रचार तेज। इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम के एक दिन बाद ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोलने की घोषणा की। वैश्विक बाजारों में तेल के मूल्यों में 11% की कमी आई। मौसम विभाग ने केरलम में रविवार तक भीषण गर्मी और उमस का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।